From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake शहर के Temple Square सम्मेलन केंद्र से यह अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजाघर का 184th वार्षिक जनरल सम्मेलन है। वार्ताकारों और जनरल अधिकारियों और गिरजे के जनरल कार्यों के साथ और इस अधिवेशन के लिए संगीत मार्मन गायक मंडली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संसार भर के क्षेत्रों से आए सदस्य और गिरजे के अधिकारी को उनके मार्गदर्शकों के द्वारा सलाह और निर्देशन प्राप्त होगा। बॉनेविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस प्रसारण का प्रबंध जनसेवा के लिए गया है। कोई भी पुनरुत्पादन करना, रिकॉर्डिंग, प्रतिलिपि बनाना या इसका कार्यक्रम का दूसरा प्रयोग करना बिना किसी लिखित सहमति के वर्जित है।
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first.
अध्यक्ष डीटर एफ उकडोर्फ गिरजाघर के प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस अधिवेशन का संचालन करेंगे।
प्रिय और बहनों, हम आपका अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर के जनरल सम्मेलन के 184वें अर्थवार्षिक अधिवेशन में स्वागत करते हैं और सदस्यों और मित्रों का जो यहां सम्मेलन केंद्र में और संसार भर में जहां कहीं भी भाग ले रहे हो का हार्दिक गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन का संचालन करता है, ने मुझे इस अधिवेशन का संचालन करने को कहा है। हम जनरल अधिकारी और जनरल सहकारी अध्यक्षता का जो इस उपस्थिति है का कृतज्ञ से अभिनंदन करते हैं। इस अधिवेशन के लिए संगीत बिल्बर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन के अंतर्गत मार्मन गायक मंडली के द्वारा कले क्रिस्टिन और रिचर्ड के साथ ऑर्गन पर साथ दिया जाएगा। गायन मंडली इस अधिवेशन का आरंभ हाफ हॉम फाउंडेशन और हम अब हमारे पक्ष के साथ प्रेस फॉरवर्ड सेंट्स गागर करेंगे और प्रारंभिक प्रार्थना एल्डर कॉरल बी क्रुक 70 के पहले परिषद के द्वारा दी जाएगी और गायक मंडली गाएगी लीड कैंडल लाइट।
Thank you. Heavenly Father, we are grateful.
हम इस मौके के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस जनरल कॉन्फ्रेंस का धन्यवाद करते हैं. हम आभार प्रकट करते हैं रिस्टोर गॉस्पेल के लिए. हम आभार प्रकट करते हैं यीशु मसीह के लिए और उनकी प्रायश्चित के लिए और उसकी शिक्षा के लिए. हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित भविष्यवक्ता प्रेसिडेंट मॉनसन के लिए और उनका समर्थन करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं और उनके काउंसलर उनके सलाहकारों के लिए और उन प्रेरितों के लिए. हम प्रार्थना करते हैं प्रचारकों के लिए और प्रार्थना करते हैं उनकी प्रेरणा और उनकी सुरक्षा के लिए. आज हम उनके लिए जो यहाँ पे भाग लेने आए हैं और प्रार्थना करते हैं और आपकी आत्मा हमारे बीच में हो. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आँखें खुलें और हम सीख सकें और आपकी आत्मा को आमंत्रित करते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
Thank you for this beautiful music. It will now be our privilege to hear from our beloved prophet, President Thomas S. Monson. He will be followed by Elder Jeffrey R. Holland of the Quorum of the Twelve Apostles. We will then be pleased to hear from Elder Ronald A. Raspund of the Presidency of the 70. Following his remarks, Elder Carlos
उनकी टिप्पणी के बाद एल्डर कार्लोस एच अमाडो 70 के हमें संबोधित करेंगे.
My beloved brothers and sisters,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के महासम्मेलन में आपका स्वागत करते समय मैं बहुत खुश हूं. हम एक महान परिवार 15 करोड़ से अधिक सदस्यों के रूप में एकत्रित हुए हैं, अपने विश्वास और उन सदस्यों को सुनने के लिए एकजुट हुए दिए हैं. पिछले 6 महीने गिरजे के कार्य को अबाधित रूप से आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्दी गुजर गए हैं. 1 महीने पहले गिल्बर्ट अरिजोना मंदिर एक शानदार भवन को समर्पित करना मेरा सौभाग्य था. समर्पण की पूर्व संध्या पर नजदीकी डिस्कवरी पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया था. 12,000 युवकों ने 90 मिनट का कार्यक्रम किया. नाचना, गाना और संगीतमय कार्यक्रम बहुत शानदार थे. यह क्षेत्र विशेषकर सूखे से प्रभावित हो रहा है और मैं विश्वास करता हूं कि कई हफ्तों से वर्षा के लिए बहुत सी प्रार्थनाएं करते परमेश्वर से की गई होंगी. दुर्भाग्य से एक कार्यक्रम से ठीक पहले आरंभ हुई और पूरे कार्यक्रम के दौरान होती रही. ये युवा लोग बारिश में पूरी तरह भीग गए थे और ठंडा महसूस कर रहे थे, इसके बावजूद हमने प्रभु की आत्मा को अनुभव किया. कार्यक्रम के विषय विश्वास के प्रति सच्चे रहना को मुस्कुराते हुए और उत्साहित उनके विषय में सोचा. उत्साहित युवकों और युवतियों ने शानदार ढंग से प्रदर्शित किया था. ठंड और बारिश के बावजूद यह एक विश्वास भरा और प्रेरणादायक अनुभव था जिससे यह युवा लोग हमेशा याद रखेंगे और अपने बच्चों और नाती पोतों को आने वालों को सालों में सुनाते रहेंगे. अगले दिन गिल्बर्ट एरिजोना मंदिर का समर्पण हुआ. यह गिरजे का 142वां क्रियाशील मंदिर बन गया. पिछली शाम के विपरीत दिन सुंदर और सूर्य के प्रकाश से भरपूर था. सभी सत्र सच से प्रेरणादायक थे. मेरे साथ अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग और बहन टेड आर कॉलेस्टर और एल्डर और बहन विलियम ऑल वर्कर और एल्डर और बहन कैंट रिचर्ड मई में मंदिर को समर्पित किया जाएगा. अन्य मंदिरों को इस साल बाद में पूरा किया और समर्पित किया जाएगा. 2015 में हम संसार के कई भागों में नए मंदिरों का पूरा और समर्पण करेंगे. यह प्रक्रिया जारी रहेगी. जब पहले से घोषित मंदिर पूरे हो जाएंगे तब हमारे पास विश्व भर में 170 क्रियाशील मंदिर हो जाएंगे. यद्यपि वर्तमान पहले से घोषित मंदिरों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और निकट भविष्य में हम किसी नए मंदिर की घोषणा नहीं करेंगे. हम नए मंदिर की आवश्यकताओं को निर्धारित करना और इनके लिए स्थान खोजना जारी रखेंगे. इनकी घोषणाएं तब भविष्य के महासम्मेलन में की जाएंगी. हम मंदिर निर्माण करने वाले और मंदिर जाने वाले लोग हैं. भाइयों बहनों, अब हम उन संदेशों को सुनने के लिए उत्साहित हैं जो हमें आज और कल दिए जाएंगे. जो हमारा संबोधन करेंगे उन्होंने इस अपने संदेश को तैयार करने में परमेश्वर से मदद और निर्देशन पाने का प्रयास किया है. मुझे आशा है हम प्रभु की आत्मा से भर उठेंगे और प्रोत्साहन और प्रेरणा पाएंगे जब हम उन्हें सुनते और इनसे सीखते हैं. ये
learn in the name of Jesus Christ.
यीशु मसीह के नाम में आमीन.
President Monson.
अध्यक्ष मॉन्सन, हम आपसे प्रेम करते हैं. प्रभु ने जब भी आपको बुलावट दी, आपने प्रत्येक बुलावट को अपने मन और अपने तन से किया, विशेषकर पवित्र पद जिस पर आप अभी हैं. आपको आपकी अटल सेविकाई करने के लिए और आपके कर्तव्य के प्रति निष्ठा के अनुचित उदाहरण के लिए संपूर्ण गिरजाघर धन्यवाद करता है. प्रशंसनीय और पुरस्कार के साथ प्रत्येक उनके लिए जिनको हम इन अंतिम दिनों में स्थिरता से खड़े रहने की जरूरत होगी. मैं सभी से और विशेषकर गिरजे के युवाओं से कहता हूं कि यदि आपने अभी तक नहीं किया है, आपको अपने आप में अपने विश्वास को बचाने के लिए बुलाना होगा. या कुछ यहां तक व्यक्तिगत साधारण दुर्व्यवहार सहने हैं, क्योंकि आप अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे घर के एक सदस्य हो. ऐसे लम्हे मैं आपको अपने लिए दोनों उत्साह और प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी थी है. उदाहरण के लिए हाल ही में एक प्रचारक बहन ने लिखा था, मेरे साथी और मैंने एक आदमी को टाउन स्क्वायर पर बेंच में बैठकर दोपहर का खाना खाते हुए देखा था. जैसे ही हम उसके निकट पहुंचे, उसने ऊपर देखा और हमारे प्रचारक नेम टैग को देखा. उसकी आंखों की भयानक दृष्टि के साथ वह कूद कर खड़ा हुआ और हाथ उठाकर मुझे मारने लगा था. मैं समय रहते नीचे हो गई. उसने सिर्फ उसका खाना मुझ पर थूक दिया और अति भयानक बातें हमसे कहने लगा था. हम वहां से बिना कुछ कहे चली गई और हम अपने चेहरे से खाने के कणों को साफ करने लगी. सिर के पीछे आलू के मोटे कणों को भी महसूस किया जो उसने मेरे पीछे से मारे थे. कभी कभी प्रचारक होना कठिन होता है, क्योंकि ठीक उसी समय मैं वापस जाकर उसे छोटे व्यक्ति को पकड़ के कहना चाहती थी, कृपया सुनिए, परंतु नहीं किया. इस समर्पित प्रचारक से मैं बोलता हूँ, प्यारे बच्चे, तुमने अपने नर्म तरीके से प्रतिष्ठित औरतों और पुरुषों के घेरे में प्रवेश किया, जिनके पास, जैसे मॉर्मन की पुस्तक के भविष्यवक्ता याकूब ने कहा था, और उसकी मृत्यु क्रूस पर कष्ट और जगत के लज्जास्पद व्यवहार का अपने ऊपर लेने का ध्यान रखें. अवश्य यीशु स्वयं भी याकूब के भाई नेफे ने लिखा था, और अपने पापों के कारण जगत उसका कोई महत्व को नहीं समझेगा और उसे सताएगा और वह सहनशील बना रहेगा. लोग उसे मारेंगे और वह मार सहेगा. हाँ, वह उस पर थूकेंगे और वह सहेगा, क्योंकि मानव संतान के लिए उसमें पेड़ प्रूफ दिया है और उसके लिए यह लंबी यात्रा झेलेगा. उद्धारकर्ता के साथ अपना अनुभव को रखें. वहां पर नकराने का एक लंबा इतिहास है और भविष्यवक्ता और प्रेरितों द्वारा दर्दनाक बहुत बड़े मूल्य चुकाने पड़ रहे हैं. हर पीढ़ी के प्रचारकों और सदस्यों को जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट का उत्तम रास्ता से मानव परिवार को ऊपर उठाने के लिए कोशिश की है. अब मैं क्या कहूँ. इब्रानियों की पुस्तक में लेखक ने पूछा, उन्होंने जिन्होंने सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, लड़ाई में वीर निकले, विदेशी फौजियों को भगाया, उन्होंने अपने को जीवित पाया जबकि कितने मर मर गए और छट्टे में उड़ाए जाने और कोहरे खाने लगे, कहने पढ़ने के द्वारा परखने लगे, पथराव किए गए, आर से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली के कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे. संसार उनके योग्य न था. फिर जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे. सच में स्वर्ग के दूत रोए थे जैसे वे शिष्यता का संसार में अक्सर परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में ऐसे मूल्य को लिखा कर रखते हुए। उद्धारकर्ता स्वयं जैतून के पहाड़ पर बैठकर और उनके लिए जिनका हजारों सालों से अस्वीकार किया जाता और उसकी सेविकाई में हत्या कर दी गई के लिए उसने अपने खुद के आंसू बहाए थे और अब भी उसे अस्वीकार कर और हत्या कर दी जाती है। हे जेरूसलम, हे जेरूसलम, ये शुरू हुआ था। तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर प्रसार करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ा छोड़ा जाता है। और यहाँ पर गिरजा के प्रत्येक युवा पुरुषों और युवतियों के लिए एक संदेश है। आप आश्चर्यचकित होंगे यदि ये कि हाई स्कूल में सदाचारी स्तर को लेने का उत्साह योग्य है, या सिर्फ मिशन पर जाना ही अति प्रशंसा की निंदा करना है, या समाज में अधिक विरोध करना, जो कि कभी कभी जीवन में आर्थिक श्रद्धा का उपहास करते हो। हाँ, ये योग्य है, क्योंकि विकल्प है हमारे घर होना, हमें अकेला छोड़ा देना, व्यक्तिगत तौर से अकेले, एकाकी परिवार, अकेले पड़ोसी और अकेला राष्ट्र। तो यहाँ पर हमारे लिए बोझ है उनका, जिन्हें मसीह संदेश देने के लिए बुलाया गया है, शिक्षा देने, प्रोत्साहित करने और लोगों की जय जयकार करने के अतिरिक्त यह शिष्यता का खूबसूरत भाग है। समय दर समय यह सामान्य संदेशवाहक परेशानी से ऊपर चेतावनी देने और कुछ समय सिर्फ रोने के लिए, ये दर्द भरा भाग है। वह पूरी अच्छी तरह से जानते हैं कि वादा किए भूमि की ओर जाने का रास्ता दूध और मधु की धाराएं बहती है से होता हुआ, जरूरत के रास्ते से गुजरता हुआ, तू करना और तू ना करना से पार्ट सियोन से होकर जाता है। दुर्भाग्यवश संदेशवाहकों को परमेश्वर की पवित्र आज्ञाओं के आदेश हमें आशीष और सुरक्षा प्रदान की जाए, जो आज अधिक लोकप्रिय नहीं है जैसे प्राचीन काल में हुआ करते थे, जैसे कि आखिरकार दोनों पर थूका जाना, प्रचारक बहनों को पर आलू का फेंका जाना प्रमाणित कर सकता है। घृणा एक भद्दा शब्द है। यहाँ पर आज भी अभी भी जो कांपते हुए भ्रष्टाचार के साथ कहते हैं, मैं भविष्यवक्ता मिकाया से घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय में कभी भी कल्याण की नहीं, सदा हानि की ही नबूवत करता है। उस तरह की घृणा एक भविष्यवक्ता के लिए ईमानदारी ने अभिनंदन की जान ली, जैसे उसने राजा नूह से कहा था, और तुमसे सत्य कहने के कारण तुम मुझ पर क्रोधित हो, और फिर परमेश्वर की वाणी को कहने के कारण तुमने मुझे पागल समझा, या हम प्रांतीय कुलपति कटबंदी निष्ठुर कंजूस पुराना और बड़ा कहकर जोड़ सकते हैं। यह प्रभु स्वयं ही भविष्यवक्ता यशाया से मातम करते हैं। यह बालक यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वह दर्शी से कहते हैं, दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं, हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। दुखद काफी है मेरे युवा दोस्तों, यह हमारी उम्र की विशेषता है कि यदि लोगों को कहीं परमेश्वर कभी नहीं चाहिए, वे खुद ही परमेश्वर बना लेंगे जो अधिक मांग नहीं करेंगे, सुख साधन का परमेश्वर। उन्हें कोई कहेगा जो सिर्फ कश्ती को हिला भी ना पाए लेकिन उसे बांध भी ना पाए, परमेश्वर जो हमारा सिर पर थपथपाए, हमें गुदगुदाए, तब हम साथ भागने को कहे और गेंदा को उठाने को कहे। बताइए, मनुष्य ने परमेश्वर को अपने ही खुद की आकृति में बनाया है। कभी कभी, और यह समय सबसे बड़ा व्यंग्य लगता है, इन लोगों ने यीशु के नाम की अवहेलना की करते हैं, जैसे एक जो उस तरह सुख साधन का परमेश्वर हो। सच में वह जो कहते हैं कि वे आज्ञा नहीं तोड़ते, परंतु हम अपने हमें उससे अपने दिलों में तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या यह सुख साधन का सिद्धांत का प्रतीक नहीं होता? कानों पर आसान लगता है और प्रेम के शहर में लोकप्रिय। और उनके लिए क्या जो सिर्फ पाप को देखते या उसे दूर से छूते हैं? यीशु कोदने के साथ कहते हैं, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। मैं मिलाप करने नहीं पर तलवार चलवाना आया हूँ। उसने उन्हें चेतावनी दी जो सोचते थे कि वह सिर्फ कोमलता से बोलना आया है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि संदेश के बाद संदेश स्थायी समाजों में कितनी विनती करता है।
It's obvious that the bumper sticker question, "What would Jesus do?"
हमारी नाश्वर सेविकाई के चरम पर यीशु ने कहा था, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। उसे पक्का बने रहने के लिए वह वैसा ही समझा गए थे। वह अखासा प्रेम था। उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आगे मानोगे। इस ग्रह पर हमें मसीह समान प्रेम करने की महान जरूरत है, क्योंकि नेकता ही हमारे हमेशा उसके साथ रहती है। तो यदि प्रेम ही हमारा संकेत शब्द है जैसे इसे होना चाहिए, तब उसके द्वारा लिए शब्द जो कि प्रेम अनुपम है, हमें उल्लंघन से बचना चाहिए और दूसरों के लिए कोई समर्थक का संकेत हो। यीशु स्पष्ट से समझ गए थे कि हमारा आधुनिक संस्कृति के बहुत से लोग भूल जाएंगे। यहाँ पर गंभीर भेद है पापों की क्षमा की आज्ञा में, जिसमें वह परिपूर्णता से करने की क्षमता रखता था, और उस क्षमा के विरुद्ध चेतावनी की जिसे उसने कभी नहीं किया था। विशेषकर
Jesus clearly understood what many in our modern culture seem to forget, that there is a crucial difference between the commandment to forgive sin, which he had an infinite capacity to do, and the warning.
शिक्षक मेरे युवा दोस्तों, जिगर रखो, शुद्ध मसीह सम्मान प्रेम नेकता और सच्चाई से बहाकर संसार को बदला जा सकता है।
Friends, especially my young friends, take heart. Pure Christ-like love, flowing from true righteousness, can change the world. I testify that the true and living.
मैं गवाही देता हूँ कि सच्ची और जीवित यीशु मसीह का सुसमाचार पृथ्वी पर है, और आप उसके सच्चे और जीवित गिरजा के सदस्य हैं। उसे बांटने की कोशिश करें। मैं सुसमाचार की और गिरजा की साक्षी देता हूँ, पुरोहिता कुंजी के पुनस्थापन की विशेष गवाही के साथ जो शक्ति को खोलती है और प्रभावकारी गुण से धर्मविधियों को बचाती है। मैं अति निश्चित हूँ कि उन कुंजियों को पुनस्थापित किया गया है और कि यह धर्मविधियों एक बार फिर से अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर के द्वारा उपलब्ध है। तब मैं प्रभावित हूँ। मैं आपके सामने इस पुष्पीठ पर खड़ा हूँ और आप मेरे सामने सम्मेलन बैठे हैं। दृढ़ बनो, सुसमाचार में ईमानदारी से जियो, चाहे आपके चारों तरफ दूसरे न जीते हो। अपने भरोसे को शिष्टाचार और करुणा से बचाएं, लेकिन बचाएं। प्रेरित वाणियों का लंबा इतिहास है, शामिल है वे भी जो सम्मेलन को सुनेंगे, आपकी और मसीह पद के शिष्टता होने पर संकेत करते हैं। वे बिना महान विस्तार के एक लंबा और सकरा मार्ग है, परंतु इस पर मांचक और सफलतापूर्वक यात्रा हो सकती है के साथ मकसद में दृढ़ विश्वास रखते हुए आशा की अखंड ज्योति में और परमेश्वर और सभी मनुष्यों से प्रेम रखते हुए सदैव आगे बढ़ते चलो। ऐसा एक पथ पर हिम्मत से चलने से आपको स्थायी विश्वास मिलेगा, दुष्ट पावन के विरुद्ध सुरक्षा पाएंगे, यहाँ तक पवन वायु में स्तंभ भी और चट्टान के भांति हमारे मुक्तिदाता पर विश्वास को पाएंगे, जिसे यदि आप श्रद्धा पूर्वक शिष्यता बनाएंगे, आप गिर नहीं सकते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
On May 20th of last year,
a massive tornado pummeled the suburbs. स्वीकार करना एक सौभाग्य है. यह बोझ को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ बांटने और प्रभु यीशु मसीह के होने के साथ जुड़ा है. पिछले साल 20 मई को ओकामा सिटी के 1.6 किलोमीटर चौड़े और 27 किलोमीटर लंबे क्षेत्रों को इस जबरदस्त तूफान के ठीक एक सप्ताह बाद मुझे उस क्षेत्र में जाने के लिए नियुक्त किया गया जहां पूरी तरह उजड़े हुए शहर में घर और संपत्ति चारों ओर बिखरे हुए थे. जाने से पहले मैंने हमारे प्रिय भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन से बात की जो इस प्रकार के प्रभु के कामों से उत्साहित होते हैं. न केवल उनके पद बल्कि उनके भलाई के प्रति आदर सहित मैंने पूछा आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो, आप मुझे क्या कहवाना चाहते हो. उन्होंने प्यार से मेरे हाथों को लिया जैसे वे प्रत्येक पीड़ित के साथ और प्रत्येक उसके साथ जो मदद कर रहा था करते यदि वे वहां होते और कहा पहले उनसे कहना मैं उनसे प्रेम करता हूं, दूसरा उनसे कहना मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तीसरा कृपया प्रत्येक को धन्यवाद कहना और वो वहां मदद कर रहा है. 70 की अध्यक्षता के सदस्य के रूप में अपने कंधों पर मैं मूसा को कहे प्रभु के शब्दों के भार को महसूस कर सकता था. इसराइली पुरानियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरानियों और उनके सरदार हैं. तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा और जो आत्मा तुझमें है उनमें से लेकर मुझमें समवाऊंगा और वो इन लोगों का भार तेरे संग उठाएंगे रहेंगे और तुमको अकेला उठाना ना पड़ेगा. ये शब्द प्राचीन समय के हैं, फिर भी प्रभु का तरीका बदला नहीं है. वर्तमान में गिरजे प्रभु ने 317 सत्रों को नियुक्त किया है जो कि 8 परिषदों में सेवा करके प्रथम अध्यक्षता के बोझ को उन्होंने उठाने में 12 परितों की मदद करते हैं. उस जिम्मेदारी को मैं अपनी आत्मा गहराई में आनंद पूर्वक महसूस करता हूं, जैसे कि मेरे भाई साथी भाई करते हैं. हालांकि इस शानदार काम में हम एकमात्र नहीं है, विश्व भर में गिरजे के सदस्य के रूप में हम सभी के पास दूसरों के जीवन को आश्रित करने के शानदार मौके होते हैं. हमारे भविष्यवक्ता से मैंने सीखा था कि तूफान पीड़ित लोगों को क्या चाहिए, प्रेम, प्रार्थना और मदद करने वाले हाथों की प्रशंसा. आज दोपहर हम में से प्रत्येक अपना दाया हाथ उठाएगा और प्रथम अध्यक्षता और 12 प्रेतों की परिषद को अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के भविष्यवक्ता, दूरदर्शी और प्रकटीकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा. यह एकमात्र औपचारिकता नहीं है, न ही यह केवल उनके लिए सुरक्षित रखी गई है जो मुख्य सेवा के लिए नियुक्त किए जाते हैं. अपने मार्गदर्शकों को स्वीकार करना एक सौभाग्य है. यह उनके बोझ को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ बटने और प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के साथ जुड़ा है. अध्यक्ष मॉन्सन ने कहा है हम उन लोगों से घिरे हैं जिन्हें हमारे अध्ययन, हमारे उत्साह, हमारी मदद, हमारी दिलासा, हमारी दया की जरूरत है. चाहे वे परिवार के सदस्य हों, मित्र हो, जान पहचान वाले हों या अपरिचित, हम यहाँ पृथ्वी पर उसके बच्चों की सेवा करने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रभु के हाथ हैं. हम इसे प्रत्येक पर आश्रित है. तुम में से जो उन छोटों से छोटे भाइयों में किसी एक के साथ किया है वह मेरे ही साथ किया है. क्या हम प्रेम के साथ जवाब देंगे यदि हम किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए भेंट करने, फोन करने, संदेश लिखने या दिन बिताने का मौका मिलता है? या क्या हम उस युवक की तरह बनेंगे जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना स्वीकार किया था? हम सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। उस युवक को प्रभु की ओर से पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य में महान सेवा के लिए नियुक्त किया गया था, फिर भी वह पीछे लौट गया क्योंकि वह बहुत धनी था। हमारी संसारिक संपत्ति का क्या हो सकता है? हम देख सकते हैं तूफान उनके साथ कुछ मिनटों में क्या कर सकता है। यह हम में से प्रत्येक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की सेवा में अपने समय, प्रतिभा और स्वतंत्रता उपयोग करते हुए आत्मिक खोजने को स्वर्ग में भरने का प्रयास करें। यीशु मसीह ने मेरे पीछे हो लो बुलाहट को देना जारी रखा था। वह निस्वार्थ रूप से अपने अनुयायियों के साथ अपनी जन्मभूमि में चला। वह हमारे साथ चलता है, हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें मार्ग दिखाता है। हमारे परिपूर्ण उदाहरण का अनुसरण करने के लिए उद्धारक को पहचानना और उसका सम्मान करना है, जिसने अपने पवित्र और बचाने वाले प्रायश्चित से व सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके हमारे सभी बोझों को उठा लिया। हम में से प्रत्येक से केवल इतना चाहता है कि हम शिष्यता के आनंददायक बोझ को उठाने के योग्य और इच्छुक हों। ओकाहोमा में मुझे उन कुछ परिवारों से मिलने का मौका मिला जो शक्तिशाली चक्रवात से बर्बाद हो गए थे। जब मैं सोरलर परिवार से मिला, मैं उनकी बेटी टोरी के अनुभव से विशेष रूप से प्रभाव हुआ था। टोरी उस समय वह प्लाजा टावर्स एलिमेंट्री स्कूल की पांचवी कक्षा में पढ़ती थी और उसकी माँ यहाँ हमारे साथ उपस्थित है। जब तूफान उनके स्कूल से गुजरा तो टोरी और उसके कुछ मित्र तूफान से बचने के लिए शौचालय में एकत्रित हुए। ध्यान से सुने जब मैं उस दिन के विवरण को टोरी के स्वयं के शब्दों में पढ़ता हूँ। मैंने सुना कुछ छत से टकराया था। मैंने सोचा ये केवल ओले गिर रहे हैं। यह समय तेज होती जा रही थी। मैंने प्रार्थना कही कि स्वर्गीय पिता हम सबको को बचाने और सुरक्षित रखें। अचानक हमने एक बहुत जोर से हवा खींचने की आवाज सुनी और हमारे सिरों के ऊपर से छत गायब हो गई। बहुत तेज हवा और मलबा चारों ओर उड़ रहा था और मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से को छू रहा था। बाहर अंधेरा था और ऐसा लगता था आसमान काला हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वह बवंडर का भीतरी हिस्सा था। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी, आशा और प्रार्थना करने लगी कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचानक बिल्कुल शांति छा गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने अपनी आंखों के ठीक सामने स्टॉप साइन देखा, यह लगभग मेरी नाक को छू रहा था। टोरी उसकी माँ, उसके तीन भाई बहन और अनगिनत मित्र जो कि उसके साथ स्कूल में थे, चमत्कारी ढंग से उस तूफान से बच गए जिसके साथ साथी नहीं बच पाए। उस सप्ताह पौरोहित्य धारक भाइयों ने उस सदस्यों को बहुत आशीष दी जो तूफान से पीड़ित थे। मैं टोरी को आशीष देने से विनम्र हुआ था। जैसे मैंने अपने हाथों उसके सिर पर रखा, एक पसंदीदा धर्मशास्त्र मेरे मन में आया, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी दाई ओर और तुम्हारी बाई ओर रहूंगा, और मेरी आत्मा तुम्हारे हृदय में रहेगी और तुम्हें हौसला देने के लिए मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर रहेंगे। मैंने टोरी को उस दिन को याद करने की सलाह दी जब प्रभु के सेवक ने उसके सिर पर अपने हाथों को रखा और घोषणा की थी कि उस तूफान में उसे स्वर्गदूतों द्वारा सुरक्षित रखा गया था। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को बचाने के लिए आगे आना एक अनंत प्रेम का प्रमाण है। यह ऐसी सेवा है जिसकी अपेक्षा की जाती है। अक्सर हमें दूसरों की जरूरत के साथ में उनकी मदद करने मौका दिया जाता है। गिरजे के सदस्य के रूप में हम सबकी पवित्रता जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का बोझ उठाने में मदद करें ताकि वे हल्के हो जाए, उनके दुखों से दुखी हो जो दुखी हैं, उन हाथों को ऊपर उठाएं जो लटके हैं और कांपते घुटनों को सहारा दें। भाई और बहनों, आप में से प्रत्येक का प्रभु बहुत आभारी है क्योंकि चाहे बड़े हो या छोटे, अपने प्रतिदिन अपनी उदारता और दया से सेवा के अनगिनत घंटे दिए और कार्य किया। मॉर्मन की पुस्तक में राजा बिन्यामिन ने सिखाया था, जब तुम अपने साथियों की सेवा करते हो, तुम अपने परमेश्वर की सेवा करते हो। अपने भाइयों और बहनों की सेवा करने पर केंद्रित होने से हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में दिव्य निर्णय लेने में मार्गदर्शन मिल सकता है और हमें तुम उसका मूल्य समझने और उससे प्रेम करने के लिए तैयार होते हैं जिससे प्रभु प्रेम करता है। ऐसा करने से हम अपने स्वयं के जीवन द्वारा गवाही पाते हैं कि हम शिष्य हैं। जब हम उनके काम में व्यस्त रहते हैं और उनकी आत्मा को अपने साथ महसूस करते हैं, हमारी गवाही विश्वास, भरोसा और प्रेम में विकास होता है। मैं जानता हूं कि मेरा मुक्तिदाता यीशु मसीह जीवित है, कि वह आज अपने भविष्यवक्ता प्रिय अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन से और उसके द्वारा बातें करता है। मेरी प्रार्थना है कि हम उस आनंद को पाएं जो कि एक दूसरे का बेशक सरल और छोटा बोझ उठाने की पवित्र सेवा से मिलता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का जन्म अस्मरण विचित्र परिस्थितियों में हुआ था। वे दीन स्थितियों में पले बड़े थे। संसारिक वस्तुओं के बिना अपने विषय में उन्होंने कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह भी नहीं। उन्हें कभी नहीं सम्मान पक्षपात सामान्यता प्राप्त हुई और ना ही पसंदीदा व्यवहार मिला धरती के राजनेताओं से और ना धार्मिक नेताओं का जो उनके उनके दिनों में थे। उनके उपदेश सरल थे और जबकि हजारों की भीड़ उनका अनुसरण करती थी, उनकी सेवा हमेशा एक एक कर लोगों को आशीषित करने में युक्त थी। उन्होंने असंख्य चमत्कार उनके बीच किए जिन्होंने उसे परमेश्वर से भेजा हुआ स्वीकृत किया। उन्होंने अपने शिष्यों को चमत्कार करने का अधिकार और शक्ति दी और बड़े काम जो उनसे हुए, परंतु उन्होंने कभी उन्हें पापों को क्षमा करने का विशेष अधिकार नहीं दिया। उनके शत्रु रोषपूर्ण हो गए जब उन्होंने उन्हें यह कहते हुए सुना, जा और फिर पाप ना कर और तेरे पाप क्षमा हुए। वह उच्च अधिकार उसी का था क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है और क्योंकि वह उन पापों का भुगतान अपने प्रायश्चित से करेगा। उसकी मृत्यु पर शक्ति भी एक ईश्वरीय गुण था। जेरस एक आराधनालय का सरदार नबिंती की मेरे घर चल, क्योंकि उनके 12 विषयों की एकलौते बेटी थी और वह मरने पर थी। स्वामी ने उनकी विनती को सुना और जैसे वह जा रहे थे उसके नौकर ने जेरस को कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। घर में घुसते ही यीशु ने सबको बाहर जाने के लिए कहा और सीधे जाकर उसका हाथ लेकर उसे उठाकर कहा। एक और अवसर पर जब वह नैन के शहर जा रहे थे, वह एक अंतिम संस्कार के जुलूस में आए। एक विधवा अपने इकलौता पुत्र के मृत्यु पर रो रही थी। दया से भर उन्होंने अर्थ को छूकर कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। लोगों ने जब यह चमत्कार देखा, बड़ाई करके उन्होंने कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और भी ध्यान देने योग्य था क्योंकि उन्होंने युवा पुरुष को कानूनी तौर पर मृत घोषित कर दिया था और उसे दफनाने ले जा रहे थे। दो लोगों को जीवन में वापस लाने से वह प्रमाणित हुए क्योंकि पृथ्वी पर अधिकार और शक्ति का जिसने विश्वासियों को चकित कर और निकटों को डर से भर दिया। तीसरा अवसर बहुत ही भव्य था। मर्था, मैरी और लाजरस भाई बहनों थे जिन्हें मसीह अक्सर मिलने जाते थे। जब उन्होंने लोगों से जालरस की मृत्यु की सूचना दी तो उन्हें 4 दिन लगे परिवार तक पहुंचने में। मार्था को सहानुभूति देते हुए उन्होंने उससे सुरपुट किया, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि भी मर जाए तो भी जाएगा जिएगा। जब उधारकर्ता ने शोक मनाने वाले वालों को कब्र से पत्थर हटाने को कहा, मार्था ने डरते हुए उनसे कहा, प्रभु उसमें से तो ओब दुर्ग आती है क्योंकि उसे मेरे 4 दिन हो गए। तब यीशु ने उसे याद दिलाया, क्या मैंने तुझसे कहा था कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, और ये कहा। उसने बड़े शब्द से पुकारा कि लाजरस निकल आ, और वह जो मर गया था वह निकल आया, और लाजरस के 4 दिन कब्र में रहने के बाद परमेश्वर के पुत्र के दुश्मनों को सामना करना पड़ा अखंडीय सबूत का, जिसे वह ना अनदेखा क्षीण बिगड़ सकते थे। बाद में जीवित मसीह में यरूशलेम में अपने प्रेरितों के साथ आखिरी फसा का पर्व मनाया, स्थापित किया प्रभोज के धर्मविधि, और उन्हें एक आज्ञा दी, निष्पक्ष सेवा से एक दूसरे को प्रेम करो। उसके बाद अपने सबसे परम प्रदर्शन में मनुष्य जाति के और अपना प्रेम और पूरे मन की इच्छा से वह साहस से चले और निश्चित से सामना करने अपने सबसे दृढ़ता और परीक्षण की ओर। गेत्सेमनी के बगीचे में निरा निकले में उसने सबसे तीव्र पीड़ा का कष्ट उठाया और रोए के जो से खून बहाकर अपने पिता के आगे पूरी तरह से समर्पण कर उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और हमारी बीमारियों को पीड़ा अपने ऊपर ले लिया ताकि हमारी सहायता हो। हम कर्जदार हैं उसके और हमारे स्वर्गीय पिता के, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसके बलिदान ने हर एक को आशीषित किया, आदम से मनुष्य जाति को पहले से आखिरी तक। एक बार गेत्सेमनी में उसकी पीड़ा खत्म हुई, उसने खुद को अपने निकंदों को दे दिया, अपनों से ही धोखा मिला, उन्हें जल्दी में दंड दिया। एक ऐसी स्थिति कि दोनों की तरह से सुनिश्चित और अवैध थी, एक ऐसा परीक्षण जो कि दोनों तरह से चलाकी भरा और अधूरा था। उसी रात उसे परमेश्वर की निंदा के आरोप में दोषी ठहराया गया और मृत्यु की सजा दी गई। उसकी नफरत और बदले की प्यास में, क्योंकि उसने उनसे कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र है, उसके दुश्मनों ने प्लाइट को उसे मृत्यु देने के लिए रचा, और उसके अनंत में उन्होंने अपने से आरोप ईश्वर की निंदा पर हो। रोमियो द्वारा उसकी तरक्की तिरस्कार और भी क्रूस था, उनका मजाक उड़ाना और अपमान करना, उसके आत्मिक राज्य का अवमानना, राजपेक्षक कोटों के ताज से उसके दर्द भरे कोटे और लंबी पीड़ा से उसको जनता से सोलू के चढ़ाना पर सब चेतावनी थी हर व्यक्ति के लिए जो अपने को उसका चेला कहता था। अपने कष्ट के हर क्षण में मुक्तिदाता में संसार को उसने हमेशा दूसरों को आशीषित करने की सोची। दयालुता और स्नेह से उसने विनती की, यहुन्ना से उसके माता मरियम का ख्याल रखने के लिए उसके स्वर्गीय पिता से, जहाँ उसके शिष्य उदासीनता निराशा और अस्थाई की पीड़ा का सामना कर रहे थे। हमारा उद्धारकर्ता अपने परमेश्वर की महिमा योजना के अन्य भाग में अपनी सेवकाई के अन्य रास्ते में आगे बढ़ रहा था। 3 दिन के थोड़े समय में उसने बिना थके हुए मुक्ति के आसमय कार्य की को मुक्ति मृतक के बीच स्थापित किया था। उस दिन में परमेश्वर के सभी परिवार के लिए अत्यधिक आशा बन गई थी। उस भेंट के दौरान उसने अपने विश्वासी अनुयायियों को स्थापित किया ताकि वह मुक्ति आत्मभर हुए थे जो कि जीवन में महिमा की योजना को जान नहीं पाए थे या उन्होंने उसे नकारा था। अब उनके पास उदासता मुक्त होने का मौका है। उसका नाम आत्मिक संसार में पूरा हुआ था। वह अपनी आत्मा के साथ अपने शरीर को एकाग्र करने के लिए पृथ्वी पर लौटा। यहाँ तक उसने अपने अधिकारकर्ता से मुक्ति के ऊपर शक्ति दिखाई, जिनका आत्मिक योगदान दिया। उसने जीवन को अपने पुनरुत्थान का प्रदर्शन से पहले जीवन में लिया था ताकि सिर्फ वे जीवन में लौटे जो कि चमत्कारिकता से बढ़ाया ताकि वह मृत्यु प्राप्त कर सके। मसीह पहला था जो पुनरुत्थान हुआ और कभी नहीं मरा, हमेशा के लिए एक संपूर्ण अनंत शरीर पर अधिकार करने के लिए। अपने पुनरुत्थान अवस्था में वह मरियम के सामने प्रकट हुआ, उसने उसे तुरंत पहचान लिया और उसकी आराधना करने लगे। हमारा मुक्तिदाता हमारी कोमलता के साथ उसने उसे चेतावनी दी, उसके अन्य और महिमापूर्ण स्थिति को विचारने के लिए मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। उसने अपने अतिरिक्त साक्षी अपने आत्म संसार की सेविकाई को जो सच्ची और पूर्ण थी प्रदान की, बाद में भाषा को सुनिश्चित की। उसने कहा, अपने परमेश्वर को तुम्हारे पास के पास लाऊं पर जाता हूं और अपने पिता के पास जाने के बाद अब वापस आया और उसने प्रेरितों के सामने प्रस्तुत किया। मैं प्रमाणित करता हूं कि मसीह का दोबारा आने वाले से बहुत अलग होगा। वह अपने शक्ति और महिमा के साथ आएंगे अपने विश्वासियों के साथ। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर शांति का राजकुमार बाद हुआ उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता जो जीवित के न्याय और मुक्ति पर न्याय मसीह के नाम पर। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि परमेश्वर आएंगे और वो आएंगे अपनी महिमा और पूरे पावर के साथ और वो कहेंगे वो राजाओं के राजा बन के आएंगे, शांति का राजकुमार बन के आएंगे जो जीवितों को न्याय अमृत पर न्याय कर्मी मसीह के नाम में।
Amen.
Amen.
The choir and congregation will now stand and join.
गायक मंडली और कलीसिया साथ खड़े होकर गाएगी Choose the Right। गीत के समापन पर हम बहन लिंडा एस रिवर्स सहायता संस्था की जनरल अध्यक्षता से दूसरी सलाहकार को सुनेंगे। उसके बाद एल्डर नील एल एंडरसन बोलेंगे वे 12 प्रेरित के परिषद से। गायक मंडली फिर गीत गाएगी ए न्यू कमांडमेंट्स आई गिव अनटू यू।
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dear brothers and sisters, today I am blessed to have my 13 oldest grandchildren in this congregation. This has caused me to ask, what do I want my grandchildren to know? This morning, I would like to talk frankly to my family and to yours.
हम मार्गदर्शकों के रूप में अश्लीलता के कारण हुए हमारे गिरजा के सदस्यों और उनके परिवार के नुकसान के बारे में बहुत ही चिंतित हैं। शैतान अभूतपूर्व प्रकोप के साथ आक्रमण कर रहा है। एक कारण है हमें यहाँ पृथ्वी पर काम वासना और भावनाओं को नश्वर जीवन में नियंत्रण रखना सीखना है। परमेश्वर ने ये भावनाएं दी है कि हम विवाह करें और बच्चा पैदा करने में मदद करती हैं। एक आदमी और एक औरत के बीच घनिष्ठ रिश्ता विवाह है, जिससे बच्चों को नश्वरता में लाना भी खूबसूरत प्रतीत होता है। सुंदर अनुभव जो कि दो अर्पित दिलों को एक साथ बांधता है। आत्मा और शरीर दोनों एक हो जाते हैं और जैसे हम दोनों एक दूसरे को श्रेष्ठ रखना सीखते हैं, खुशी और आनंद को पूरी तरह से पाते हैं। अध्यक्ष किम्बल ने सिखाया था कि विवाह दंपति पति या पत्नी जीवन में श्रेष्ठ हो जाते हैं और कोई भी दूसरा रुझान या व्यक्ति या वस्तु संगी दंपति से ऊपर नहीं हो सकते। विवाह पूरी तरह से अपेक्षित निष्ठा और पूरे तौर पर ईमानदारी है। कई सालों पहले हमारा एक बच्चा ध्यान से देखने में दुखी लग रहा था। मैं उसके शयन कक्ष में गई, जहां पर उसने अपना हृदय खोल कर रख दिया और मुझे समझाया कि वह एक दोस्त के घर गई थी और अचानक से चौंकाने और परेशान करने वाली टेलीविजन पर निवस्त्र एक आदमी और एक औरत के बीच होती तस्वीरें और क्रिया का देखा था। उसने सिसकते हुए कहा कि वहां जो उसने देखा उसके विषय में वह कितना बुरा महसूस कर रही थी, कि वो व्यक्त किया करना चाहती थी कि वह सब उसके दिमाग से बाहर निकल जाए। मैं एहसानमंद हूँ कि उसने मुझ पर भरोसा किया। हमारे उद्धारकर्ता के प्रायश्चित द्वारा उसके मासूमियत और दुखी मन को शांत किया था। मैं उस पवित्र अनुभूति का स्मरण करती हूँ जो मुझे हुई थी और हमारे स्वर्गीय पिता से आवेदन की सहायता के लिए, जैसे ही हम एक दूसरे के साथ घुटने पर हुए थे। बहुत से बच्चे, युवा और वयस्क अनजाने में अश्लीलता से सामना कर बैठते हैं, परंतु बहुत से दोनों पुरुष और औरतें उसे देखने का चुनाव करते हैं और लगातार उसे दोहराते रहते हैं जब तक वह उसकी आदत न बन जाए। वह व्यक्तिगत तौर से अपने सारे मन से इस जाल से बाहर निकलने की कामना करते हैं, परंतु अक्सर अपने आप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम कितने एहसानमंद हैं जब इन प्रियजनों ने हम पर या गिरजे के मार्गदर्शकों पर भरोसा करना चुनना है। हमें बुद्धि से काम लेना होगा, न कि सदमे, क्रोध या इनकार कर देने वाली प्रक्रिया देनी है जिसके कारण वे फिर से शांत हो जाएं। हम अभिभावकों और मार्गदर्शकों के रूप में अपने बच्चों और युवाओं को निरंतर हर समय सलाह देने, ध्यानपूर्वक प्रेम से और समझदारी से सुनने की जरूरत है। उन्हें अश्लीलता के खतरों के विषय में वे कैसे जिंदगी पर हावी होती है और आत्मा खोने के कारण विकृत एहसास, छल, नष्ट होते रिश्ते, शीघ्र क्रोधित होना और लगभग पूरे समय की खपत, विचार और शक्ति के बारे में जानने की जरूरत है। अश्लीलता ज्यादा से ज्यादा चरित्रहीन, दुष्ट और पहले से कहीं अधिक ग्राफिक है। जैसे हम अपने बच्चों के साथ परिवार के स्तरों और सीमाओं की योजना को सलाहकार के बन सकते हैं, हमारे घरों की पूर्व सक्रियता से बिजली उपकरणों से सफाई सुरक्षित करना है। माता पिता, क्या हम सचेत हैं कि मोबाइल उपकरण इंटरनेट के साथ कंप्यूटर नहीं बहुत बड़े दोषी होते हैं? युवा लोग और वयस्कों, यदि आप शैतान के अश्लीलता के जाल में फंस गए हैं, याद रखें कि हमारा उद्धारकर्ता कितना दयालु है। क्या आपको एहसास है कि प्रभु अभी भी आपसे कितना प्रेम सहारना करता है? हमारे उद्धारकर्ता के पास आपको शुद्ध और चंगा करने की शक्ति है। वह दुख और दर्द जिसे आप महसूस करते हैं अपने प्रायश्चित की शक्ति के द्वारा खत्म कर सकता है और आपको दोबारा से शुद्ध करता है। हम मार्गदर्शकों के रूप में परिवार के सदस्यों और दंपतियों से जो अश्लीलता की बुरी लत से परेशान हैं के लिए बहुत ही चिंतित हैं। एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट आग्रह करते हैं, यदि आप अपने खुद के गंभीर पापों से मुक्त हैं, बेवजह किसी दूसरे के पापों का परिणाम को ना झेलें, आप उनके लिए करुणा महसूस कर सकते हैं। हाँ, आपको उनके ऊपर उन कामों की जिम्मेदारी लेने का एहसास नहीं होना चाहिए। जानिए कि आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पर सहायता है, दंपतियों के लिए चंगाई सभा उपलब्ध है, शामिल है, जिसमें दंपति अपने घर से ही फोन पर बुलाकर सभा में भेंट करते हैं और सभा से भाग लेने की अनुमति होती है। भाइयों बहनों, हम अपने बच्चों और युवा को कैसे सुरक्षित करते हैं? सफाई करना उपयोगी औजार है, लेकिन संसार में सबसे बड़ी सफाई है, सिर्फ एक जो आखिरकार काम करेगा, वो है अंदरूनी सफाई करना, जो कि हमारे स्वर्गीय पिता के प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता का हम सब के लिए प्रायश्चित करने का बलिदान की गहन अस्थाई गवाही का होना। हम कैसे अपने बच्चों का मार्गदर्शन हमारे उद्धारकर्ता से गहराई से परिवर्तित होकर और प्रवेश करके करते हैं? मुझे भविष्यवक्ता नेफाई की घोषणा से प्रेम है कि उसने लोगों से युवा दिनों में मोर्चाबंदी कैसे की थी। हम मसीह की चर्चा करते हैं, हम मसीह में आनंदित होते हैं, हम लोगों को मसीह के बारे में उपदेश देते हैं, हम मसीह के विषय में भविष्यवाणी करते हैं कि हमारे संतान यह जान सके कि वे अपने पापों की क्षमा के लिए कहां देखें। हम अपने घरों में ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप में से कुछ मेरी बातों को सुन चुके हैं, बताए कैसे मेरे हम प्रार्थना और अनुग्रह करते हैं कि हमें क्या करना है। उत्तर जो आता है स्पष्ट होता है, यह ठीक है यदि घर बिखरा हुआ है और बच्चे अभी तक पैजामा में हैं और कुछ जिम्मेदारियां बिना कुछ करे छोड़ देनी पड़ती हैं। सिर्फ कुछ बातें घर में पूरा करने की आवश्यकता है, दैनिक धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना और प्रार्थना करना और साप्ताहिक घरेलू संध्या करना। हमें इसे करने की कोशिश करनी है, परंतु हमेशा यह प्राथमिकता नहीं होती है और बीच में अव्यवस्था करते हैं, कभी कभार नजरअंदाज भी करते हैं। हमें अपने ध्यान बदलने हैं, कोशिश करनी है कम महत्वपूर्ण बातों के विषय में चिंता नहीं करने की। हमारा ध्यान चर्चा करके आनंदित होकर विचार करके और दोष प्रार्थना से मसीह की गवाही देकर और धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर और साप्ताहिक पारिवारिक घरेलू संध्या करने के द्वारा प्रयास करते रहते हैं। एक मित्र ने हाल में सावधान किया था, जब तुम बहनों से धर्मशास्त्र पढ़ने और अधिक प्रार्थना करने को कहते हो, यह सिर्फ उन्हें तनाव देता है, वह महसूस करते हैं कि उनके पास करने को बहुत कुछ है। भाइयों और बहनों, क्योंकि मैं अपने स्वयं के अनुभवों से जानती हूँ, मैं दैनिक धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना, प्रार्थना करना और पारिवारिक घरेलू संध्या की आशीषों की साक्षी देती हूँ। इनका अभ्यास करने से, जो कि तनाव दूर करने में मदद करता है, जीवन को दिशा देता है और घरों में सुरक्षा आती है, तब यदि अश्लीलता या अन्य चुनौतियां हमारे परिवार में आए, हम प्रभु से मदद का आवेदन कर सकते हैं, आत्मा से महान मार्गदर्शन पाने की उम्मीद कर सकते हैं। जानते हैं वे कि हमने जो सब किया है वो हमारा पिता हमसे कराना चाहा था। भाइयों और बहनों, यदि इन सब का हमारे घरों में अभ्यास नहीं होता है, हम सभी इसे अभी शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे बड़े हैं और हमारे साथ जोड़ने में इनकार करते हैं, हम स्वयं अपने आप से शुरू कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं, आत्मा का प्रभाव हमारे घरों और जीवनों में भरना शुरू हो जाता है और समय आने पर बच्चे जवाब दे सकते हैं। स्मरण करें कि जीवित प्रेरितों के द्वारा वादा करता है, जैसे आप अपने पूर्वजों की खोज करते हो और मंदिर के लिए अपने स्वयं के परिवारों के नाम को तैयार करते हो, आपकी अभी और जीवन भर की सुरक्षा दी जाएगी, जैसे आप अपने आप को मंदिर संस्तुति के लिए योग्य बनाए रखते हो। युवा अपनी स्वयं की आत्मिक सुधार के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, अगर जरूरत है अपने फोन को बंद रखें, प्राथमिक गीत गाओ, मदद के लिए प्रार्थना करो, धर्मशास्त्र के बारे में विचारो, फिल्म से बाहर चले जाओ, उद्धारकर्ता का चित्रण करो, योग्यता से प्रभु भोज लो, युवा शक्ति का अध्ययन करो, अपने मित्र के लिए उदाहरण बनो, माता पिता पर भरोसा करो, अपने धर्मार्थदर्श से मिलो, मदद के लिए पूछो, मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे पोते पोती जाने, मैं चाहती हूँ वह और आपके लिए उद्धारकर्ता जीवित हैं और हमसे प्यार करता है। उसने हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई थी, परंतु हमें अपने स्वर्गीय पिता के सम्मुख घुटनों के बल होना चाहिए, गहन दीनता से अपने पापों को स्वीकार कर और उसे क्षमा मांगने का आग्रह करना है। हमें अपने हृदय को बदलने की जरूरत है और कामना और विनम्रता के साथ सहायता को खोज करना है और जिसने हमको चोट पहुंचाई हो या छोड़ दिया हो के लिए क्षमा मांग सकते हैं। मैं जानती हूँ कि जोसेफ स्मिथ ने परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को देखा था। मैं गवाही देती हूँ कि हमारे पास पृथ्वी पर जीवित भविष्यवक्ता हैं, अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन। मैं गवाही देती हूँ कि कभी आप दूर नहीं जा सकेंगे यदि आप हमेशा परमेश्वर के भविष्यवक्ता को सलाह को चुनेंगे। मैं मंदिर में हमारे अनुबंधों और आशीषों की शक्ति की गवाही देती हूँ। मैं जानती हूँ कि मॉर्मन की पुस्तक सच्ची है। मैं इस महान पुस्तक की शक्ति को बयान नहीं कर सकती। मैं सिर्फ जानती हूँ कि दंपति के साथ प्रार्थना करना मॉर्मन की पुस्तक परिवारों की सुरक्षा की शक्ति प्रदान करती है, रिश्तों में बल और प्रभु के सामने व्यक्तिगत भरोसा देती है। मैं गवाही देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
चुनौतियाँ आपके पास आएंगी, परंतु जैसे कि आप परमेश्वर को भरोसा करेंगे, वह आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। मैं आप सबको आज प्रातः, कई वर्ष पूर्व जब मैं अपने परिवार से मिलने फ्लोरिडा गया था, एक प्रबंधक ने हमें कुछ हुआ जो हमसे बहुत दूर नहीं था। यह इतना गंभीर नहीं था जितना कि एल्डर रेजबैंड स्टोरी। एक स्त्री जो कि एक मोबाइल घर में रहती थी, अपनी सुरक्षा के लिए अपने बाथरूम में चली गई। उसका मोबाइल घर हिलने लगा कुछ क्षण बीत के ने पर और उसने अपने पड़ोसी की आवाज सुनी, मैं आपके कमरे के सामने हूँ। बाथरूम के बाहर आते ही बड़ा ही अचंभा हुआ कि उसने पता चला कि भवंडर उसके मोबाइल घर को हवा में उठाया, मध्यम से उठाकर उसके पड़ोसी के घर के ऊपर खड़ा उतार रखा था। मेरे युवा दोस्तों, दुनिया शांति से उद्धारकर्ता के दूसरे आगमन की ओर नहीं सकेगी। धर्मशास्त्र घोषित करते हैं कि सभी वस्तुओं में हलचल होगी। ब्रिगम यंग ने कहा, मुझे यह गिरजा के प्रारंभ में ही प्रकट हुआ था कि यह गिरजाघर फैलेगा, समृद्ध बढ़ेगा और विस्तार होगा और समानता में से सुसमाचार का प्रचार धरती के राष्ट्रों के बीच में होगा। वैसे भी शैतान की ताकत बढ़ेगी। भूकंप और युद्ध की भविष्यवाणियों से ज्यादा चिंता आत्मिक भवंडर और तूफान की है, जो पर्याप्त जोर से हमारी आत्मिक नींव को खड़ा उखाड़ कर हमारी आत्मा को ऐसी जगह पर उतार रख सकती हैं जिनकी हम उसकी कल्पना भी कर सकते हैं। कभी हमारे देखे बिना भी वह से हट जाएंगे। सबसे खराब आंधियां विश्वास के प्रलोभन है। पाप इस संसार का हिस्सा हमेशा में रहेगा, परंतु यह कभी भी इतना उपलब्ध अतिलोभी और स्वीकार्य नहीं था। एक प्रणामित उपाय है जो कि इस पापी के अधीन और शांति करता है, इसे पश्चाताप कहते हैं। जीवन में सभी आंधियां हमारे बनाने से आती हैं। कुछ इसलिए आती हैं क्योंकि वह मृत्यु द्वारा है और कुछ इसलिए आती हैं क्योंकि दूसरे गलत चुनाव करते हैं। युवक अध्यक्ष बॉयड के पैकर अशक्त रोग पोलियो से पीड़ित थे। जब एल्डर डैलन एच ओक्स 7 वर्ष के थे, उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। जब बहन कॉरल एफ मकोंकी युवती संस्था की जनरल अध्यक्षा किशोरावस्था में थी, उनके माता पिता का तलाक हो गया। संघर्ष आते रहेंगे, परंतु जैसे कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वह आपका विश्वास में दृढ़ करता है। प्रकृति में पेड़ जो हवाई पर्यावरण में बढ़ते हैं बहुत मजबूत होते हैं। जैसे तेज हवाएं नन्हे पौधों के चारों घूमती हैं, वह मजबूर करती हैं पेड़ों को अंदर से दो चीजें करने को। पहला, वह प्रभावित करती है जड़ों को तेजी से बढ़ने और दूर तक फैलने में। दूसरा, जो ताकतें पेड़ में सुरक्षित करती हैं की कोशिश करती हैं निर्माण को, जो असलियत में धड़ और शाखा को घना करता है और उसके लचीला करता है। हवा के दबाव से यह मजबूत जड़ें शाखाएं पेड़ को हवा से बचाती हैं। आप हमारे परमेश्वर को एक पेड़ से कहीं ज्यादा प्रिय हो। आप उसके पुत्र या पुत्री हो। उन्होंने आपकी आत्मा को दृढ़ किया है और जीवन की आंधियों को लचीला किया है। आंधियां जो आपकी युवा में आती हैं, उस हवा के सम्मान है जो युवा पेड़ के विरुद्ध है, जो आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकता है, तैयार कर सकता है आने वाले वर्षों के लिए। अपने आप को कैसे तैयार करोगे अपनी आंधियों के लिए? याद रखो कि यह मुक्तिदाता की चट्टान पर है, जो कि परमेश्वर यीशु मसीह है, जिस हर तुम अपनी नींव रख सको, ताकि शैतान अपनी प्रबल हवाओं को फेंकेगा। हम भविंडर से घुमाए जाएंगे और जब हम सारे ओले बरसेंगे और प्रबल तूफान तुम्हें चपेड़ेंगे मारेंगे, तुम्हें दुखी और घाटी अनंत शराब में खींचने की जाएगी, क्योंकि जिस चट्टान पर तुम, यह आंधी आपकी सुरक्षा है। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने कहा, जब पर एक समय गिरजे के स्तर और समाज के स्तर अधिकतर संगत में थे, वहीं आज हमारे बीच बड़ी सी खाई है जो बढ़ती जा रही है। यह खाई कुछ के लिए आत्मिक आंधियों का हलचल करती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस पिछले महीने प्रथम अध्यक्षता और 12% के एक खत एक भाग में लिखा था, कोई भी बदलाव सिविल कानून में नहीं, वास्तव में नहीं बदल सकता उसका नैतिक कानून को जो परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर हमसे आशा रखता है कि हम कायम रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, बेप्रभाव करें उस विभिन्न राय और सुरानों के जो समाज में हैं। शुद्धता का कानून साफ है। प्रजनन की शक्ति सिर्फ कानूनी तौर से विवाहित पति और पत्नी के रूप में पुरुष और स्त्री के द्वारा ही उपयोग करनी चाहिए। हम चाहेंगे कि आप पढ़ें उस सिद्धांत को जो परिवार दुनिया के लिए एक घोषणा में है। जैसे कि इस संसार फिसलता है, प्रभु ने शुद्धता के कानून में से हम यही अध्ययन। अध्यक्ष मार्शन ने कहा, मानव जाति के उद्धारकर्ता ने वर्णित किया कि हमारे बारे में वे संसार में होकर संसार के नहीं, हम भी संसार में होकर इसके नहीं हो सकते। जब हम इसे अस्वीकार करते हैं, गलत अवधारणा और गलत सीख को और परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति दृढ़ रहते हैं। जैसे कि बहुत से सरकारें और अच्छे समझदार व्यक्तियों ने विवाह के नए सिरे को परिभाषित किया, प्रभु ने नहीं किया। शुरुआत में ही परमेश्वर ने विवाह को एक पुरुष और नारी के बीच दिया है, आदम और हवा। अपने निर्देशित कैसे किया कि विवाह के उद्देश्य दूर तक हो सकते हैं, एक बालिंग की निजी पूर्ति से भी आगे। महत्वपूर्ण ढंग से प्रशंसा के एक आदर्श समायोजन की, जहां के बच्चों का जन्म पालन पोषण हो, परिवार स्वर्ग खजाना है। जैसे कि प्रेरित पॉल ने कहा, हम उन चीजों को नहीं देखते जो देखी गई हैं और जो उन चीजों को देखते हैं, जैसे कि हम प्रभु के यीशु मसीह के प्रेरित हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिखाएं हमारे रचयिता की योजना को उसके बच्चों के लिए, जो चेतावनी देना उन परिणामों को जो उसकी आज्ञाओं को अनदेखा करेंगे। हाल ही में मैं मैक लॉरल से बात करी संयुक्त राष्ट्र में, मैंने उसकी ईमेल से पढ़ता हूँ। इस बीते हुए वर्ष में मेरे कुछ मित्रों ने फेसबुक पर विवाह के विषय के मैं अपनी राय डालना शुरू किया। अधिकांश में समान लिंग के विषय विवाह का पक्ष लिया और कुछ बहुत से एलडीएस युवा ने संकेत दिया। मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं दी। मैंने पारिवारिक विवाह में अपने विश्वास को लेकर एक विचारशील तरीके से घोषणा करने का निर्णय लिया। अपनी प्रोफाइल की तस्वीर डाल मैंने लिखा, मैं उस शादी में विश्वास करती हूँ जो एक पुरुष और स्त्री के बीच है। तुरंत ही मुझे संदेश आने शुरू हो गए, तुम स्वार्थी हो, तुम आलोचनात्मक हो। कुछ ने मेरी तुलना जातिवाद और दास मालिक से की और मुझे मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने पोस्ट लिखा जो चर्च का बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर है, तुम्हें समय के साथ चलना चाहिए, चीजें बदल रही हैं और तुम्हें भी। मैं वापस नहीं लड़ी परंतु मैंने अपने कथन को नहीं हटाया। उसे अंत किया यह कहकर कि कभी कभी, जैसे अध्यक्ष मानसन ने कहा है, आपको अकेले खड़ा होना पड़ता है। आशा करते हैं युवा से कि इस इकट्ठा खड़े रहेंगे, हमेशा परमेश्वर और सच्चे रहेंगे। और विशेष चिंता से हमें उनके लिए होनी चाहिए जो संघर्ष करते हैं समान लिंग के आरक्षण में। यह एक भारी गति की आंधी है और अपना प्रेम और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ उनके प्रति जो साहसपूर्वक विश्वास से इस परीक्षण का सम्मान करते हैं और सच्चे रहते हैं परमेश्वर की आज्ञा के प्रति। परंतु सभी स्वतंत्र है, अपने निर्णय और विश्वासों के हैं हकदार हैं हमारी दयालु और विचार के। उद्धारकर्ता ने हमारे प्रेम करना सिखाया, ना केवल अपने मित्रों से परंतु उनसे जो भी हमसे सहमत नहीं है और उनके साथ जो हमारा खंडन करते हैं। उन्होंने कहा, यदि तुम उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, क्या इनाम नहीं है तुम्हारा? और यदि तुम केवल अपने भाई का अभिवंदन करते हो, क्या तुम्हारे दूसरों के लिए नहीं? भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने आगे आगाह किया कि खबरदार रहो बंधी दम्भी से और अपने मनों को बड़ा करो और सभी पुरुषों और स्त्रियों के प्रति जब तक तुम महसूस करें अपने कंधों पर उठाएं। यीशु मसीह के सुसमाचार उपहास और कट्टरता की कोई जगह नहीं है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है गिरिजा के अध्यक्षों की सोच को लेकर तो कृपया सर्च करें, चर्चा करें अपने उचित मुद्दों की अपने माता पिता और युवा नेताओं से। आपको आवश्यकता है कि शक्ति और जो प्रभु के भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करते हैं। अध्यक्ष अरबी ले ने कहा, एक ही सुरक्षा हमें इस गिरजाघर का सदस्य रहने होने से है, सीखो ध्यान से उनके वचनों और आज्ञाओं को जो प्रभु अपने भविष्यवक्ता के द्वारा देते हैं। कुछ चीजें धैर्य और विश्वास मांगते हैं। आपको सभी कुछ अच्छा ना लगे, वह खंडन कर सकता है। आपकी राजनीतिक राय, आपके सामाजिक राय हस्तक्षेप कर सकता है आपके सामाजिक जीवन में। परंतु यदि तुम इन बातों को सुनो जैसे कि यह खुद प्रभु अपने मुख से दे रहा है, नरक के दरवाजे कभी भी आपके खिलाफ प्रचलित न होंगे और परमेश्वर अंधेरे और की शक्तियों को तुमसे दूर कर देगा। जीवन की आंधियों से एक और शक्तिशाली सुरक्षा हमें बुक ऑफ मॉर्मन पुस्तक देती है। जब अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग एक किशोर थे, उनका परिवार एक नए शहर में गया। शुरू में उन्हें यह बदलाव पसंद नहीं आया। उन्होंने कुछ मित्र बनाए और उन्हें लगा कि वे हाई स्कूल के विद्यार्थियों के बीच जमा नहीं पा रहे थे, आंधियों का घुमाव हो रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी शक्ति को मुकम्मन के पुस्तक में डाल दिया। उन्हें कई बार पढ़कर अध्यक्ष आयरिंग ने मुझे मुकम्मन की पुस्तक के वापस जाना पसंद है और अक्सर उसे गहराई से पीना। इसलिए शक्तिशाली गवाही लिखी गई है कि यीशु मसीह की है। प्रभु के एक और मार्ग आपको दृढ़ दिया है, दृढ़ता से खड़े होने का एक आत्मिक उपहार जो कि विश्वास अधिकार से शक्तिशाली है। खड़े हो पवित्र स्थानों पर और हिलो नहीं। जब मैं किशोर था केवल 13 मंदिर गिरजाघर थे, आज 142 हैं। 85% गिरजा के सदस्य 200 मील के अंदर रहते हैं। प्रभु ने इस पीढ़ी को अधिक से अधिक जाने की पहुंच दी और मंदिरों को कोई भी और पीढ़ी से अधिक संसार में इतिहास में। कभी आप मंदिर के सामने खड़े हुए हैं सफेद कपड़ों में बत्तिस्मा करने के लिए, आपको कैसा महसूस किया हुआ? मंदिर एक पवित्रता के स्पर्श का ऐसा एहसास होता है, संसार की आंधियों के घुवाव और उद्धारकर्ता की शक्ति मंद कर देती है। जैसा आप मंदिर के में महसूस करते हैं वही आपका जीवन महसूस करना चाहिए। अपने दादा और दादी और दूर के चचेरे भाई जहां बहन को खोजें जो आपसे पहले जा चुके हैं, उनके नाम मंदिर में अपने साथ लेकर जाएं। जैसे आप अपने पूर्वजों के बारे में जानेंगे आप देखोगे कि रूप जीवन के विवाह के बच्चों के रूप अच्छाई के और कभी ऐसे रूप जिससे आप दूर रहना चाहेंगे। बाद में आप मंदिर में स्पृश की रचना सृष्टि की रचना के विषय में सीखेंगे, आदम और हवा के जीवन के रूप में विषय में और सबसे महत्वपूर्ण उद्धारकर्ता यीशु मसीह के विषय में। मेरे छोटे भाइयों और बहनों, कितना प्रेम हम आपसे करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप आंधियों को और मत खींचो, यह आपके दिन दृढ़ता से खड़े रहो यीशु मसीह के चेले बनकर। अपनी नींव को दृढ़ता से अपने मुक्तिदाता की चट्टान पर बनाएं, पूरी तरह से संयोजे उनकी अतुलनीय जीवन और शिक्षाओं को, उदाहरण के लिए उनकी आज्ञाओं को लगन से अनुसरण करें, समविष्ट हो उसके प्रेम की गहराई में, उसके दया और अनुग्रह में और शक्तिशाली परिचय के उपहारों में। जैसा कि आप यह करते हैं मैं आपसे वादा करता हूं कि आप देखोगे कि यह आंधियां किस लिए हैं, परीक्षा लालच विक्षरण और चुनौतियां आपकी मदद करती हैं बढ़ने में। जैसा कि आप धार्मिक जीवन साल पर साल जीते हैं और आपको विश्वास दिलाता है, मैं आपको अनुभव और को बार बार पुष्टित करेंगे कि यीशु मसीह ही क्राइस्ट हैं। आत्मिक चट्टान आपके पैरों के नीचे मजबूत और सुरक्षित रहेगी। आप खुशी मनाओ कि परमेश्वर ने यह आपको रखा है उस आखिरी तैयारी में भाग लेने के लिए। मसीह की यशस्वी की वासुएं हैं। और धारणकर्ता ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यह उसका वादा है आपसे, मैं जानता हूँ यह वादा सच है, मैं जानता हूँ वह जीवित है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
We thank all those who have participated.
गायक मंडली का महो संगीत के लिए और उन सभी वार्ताकारों का कृतज्ञता के साथ आभारी हैं जो उन्होंने इस सुबह में प्रस्तुत किए हैं। इस अधिवेशन के हमारे अंतिम वार्ताकार अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग प्रथम अध्यक्षता में पहले सिकार हैं। अध्यक्ष आयरिंग टिप्पणी के बाद गायक मंडली इस सभा को गीत गाएगी, कम यू दाओ किंग ऑफ किंग्स, और समापन प्रार्थना LHW द्वारा दी जाएगी। अध्यक्ष आयरिंग,
My dear brothers and sisters,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से कुछ को इस सभा में अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के प्रचारकों द्वारा निमंत्रण दिया गया होगा। उन प्रचारकों ने आपको बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के साथ अनुबंध बनाने का निमंत्रण पहले ही दे दिया होगा। आप में से अन्य इसे सुन रहे हैं क्योंकि आपने माता पिता पत्नी के निमंत्रण को स्वीकार किया है, या शायद आपके बच्चे ने इस आशा में आपको निमंत्रण दिया होगा ताकि आप पहले बनाए अनुबंध को वापस अपने जीवन का केंद्र बना लो। आप में से कुछ जो सुन रहे हैं उद्धारकर्ता के पास वापस आने का चुनाव कर चुके हो और आज उसके स्वागत के आनंद को महसूस कर रहे हो। आप कोई भी हो और आप कहीं भी हो, आप अपने हाथों में आपकी कल्पना से अधिक लोगों की खुशी है। प्रतिदिन और प्रति घंटे आप परमेश्वर के साथ अनुबंध बनाने या पालन करने का चुनाव कर सकते हो। अनंत जीवन के उपहार को पाने के मार्ग में आप कहीं भी हो, आपके पास बहुत से लोगों को महान खुशी का मार्ग दिखाने का मौका है जब आप चाहे परमेश्वर के साथ अनुबंध बनाने या पालन करने का चुनाव करते हो। आप चुनाव करते हो कि आप उनके लिए आशा की धरोहर रख छोड़ते हो जो आपके उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। आप और मैं इस प्रकार की धरोहर से आशीषित हुए हैं। मैं अपने जीवन की खुशी के लिए बहुत सा भाग उस पुरुष का ऋणी हूं जिसे मैं इस जीवन में कभी नहीं मिला। वे एक अनाथ थे जो मेरे परदादा में से एक बने थे। उन्होंने मेरे लिए आशा की एक बेशक कीमती धरोहर छोड़ी है। मैं आपको उन कुछ भूमिकाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें मेरे लिए यह धरोहर बनी थी। उनका नाम हेनरी कायरिंग था। वे बहुत धनवान परिवार में जन्मे थे। उनके पिता के पास कोबर्ग में जो कि अब जर्मनी में है, अत्यधिक संपत्ति थी। उनकी माँ विस्कॉन्टिस कैरलोट वॉन ब्लूमबर्ग थी। हेनरिक कार्लोटा और एडवर्ड के प्रथम पुत्र थे। कार्लोटे की मृत्यु 31 की आयु में उनके तीसरे बच्चे के जन्म के बाद हो गई थी। अपनी सारी संपत्ति और दौलत एक सफल निवेश कारण खोने के बाद जल्द ही एडवर्ड की भी मृत्यु हो गई। वह केवल 40 के थे। वह 3 अनाथ बच्चे पीछे छोड़ गए थे। हेनरिक मेरे परदादा ने अपने माता पिता और विशाल संसारिक धरोहर दोनों को खो दिया था। उन्होंने अपनी दैनिकी में लिखा था कि उन्होंने महसूस किया था कि उनकी सर्वोत्तम आशा अमेरिका जाने में है। हालांकि ना तो उनके परिवार ना कि कोई मित्र वहां था, उनके पास अमेरिका जाने की आशा की एक अनुभूति थी। वे सर्वप्रथम न्यूयॉर्क सिटी गए थे। बाद में वे अपनी छोटी बहन के साथ सेंट लुइस मिजोरी चले गए। सेंट लुइस मिजोरी में उनके साथ अंतिम दिनों का संत था। उनसे उन्होंने एल्डर पार्ली पी प्रैट को लिखा एक पैम्फलेट प्राप्त किया। उन्होंने इसे पढ़ा और फिर अंतिम दिनों के संतों के बारे में प्रत्येक शब्द का अध्ययन किया। उन्होंने प्रार्थना की, क्या वास्तव में वे स्वर्गदूत थे जो मनुष्य को प्रकट हुए थे? क्या कोई जीवित भविष्यवक्ता था? और क्या उसे सच्चा और प्रकाशित धर्म मिला था? दो महीने के ध्यान पूर्वक अध्ययन और प्रार्थना के बाद हेनरिक को सपना आया जिसमें उन्हें बपतिस्मा लेने के लिए कहा गया था। एक पुरुष जिसका नाम और पौरोहित्य पवित्र स्मृति है मैं धारण करता हूँ, एल्डर विलियम ब्राउन ने विधि को पूरा किया था। हेनरिक का बारिश के पानी के तालाब में 11 मार्च 1855 की सुबह को बपतिस्मा हुआ था। मैं विश्वास करता हूं कि हेनरिक आयरिंग तब जानते थे जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं सच है। वे जानते थे कि अनंत जीवन की खुशी पारिवारिक बंधनों से मिलती है जो हमेशा कायम रहते हैं। जबकि उन्होंने हाल ही में प्रभु की सुख की योजना को प्राप्त किया था, वे जानते थे कि अनंत आनंद की उनकी आशा दूसरों को उनके उदाहरण को का अनुसरण करने के स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर करती थी। हमारे परिवार की आशा की धरोहर के एक हिस्से के रूप में उन्होंने अपने वंशजों को लिए एक दैनिकी छोड़ी है। उस दैनिकी में मैं उनके लिए उनके प्रेम को महसूस करता हूँ। उनके शब्दों में मैं उनकी आशा को महसूस करता हूँ कि उनके वंशज हमारे स्वर्गीय घर वापस जाने के लिए उनके मार्ग पर चलने का चुनाव करेंगे। मैं कोट करता हूँ, पहली बार जब मैंने एल्डर एंड्रस को बोलते सुना, मैं हमेशा अंतिम दिनों के संतों की सभा में शामिल हुआ हूँ और ऐसे मौके असल में बहुत कम हैं जब मैं इन सभाओं में नहीं गया, क्योंकि इनमें जाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपनी दैनिकी में इसे लिख रहा ताकि मेरे बच्चे मेरे उदाहरण की नकल करें और कभी भी संतों के साथ शामिल होने के इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की अनदेखा ना करें। हेनरिक जानते थे कि उद्धारकर्ता के सदैव याद रखने और उसकी आत्मा को अपने साथ बनाए रखने की अपनी प्रतिज्ञा को हम प्रभुभोज सभा में नवीन कर सकते थे। यही वह आत्मा थी जिसने उनका मिशन के लिए समर्थन किया था, जिसके लिए उन्हें बपतिस्मा लेने के कुछ महीनों बाद ही बुला लिया गया था। वे अपने मिशन पर चले गए, अपने मिशन के प्रति विश्वासी रहने के उसके उदाहरण उसकी धरोहर के रूप वे 6 साल के लिए उस स्थान में गए थे तब इंडियन टेरिटरीज कहा जाता था। अपने मिशन में सेवा मुक्त होने के बाद वे ओक्लाहोमा से सॉल्ट लेक तक लगभग 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आए थे। उसके बाद उन्हें परमेश्वर के भविष्यवक्ता द्वारा तुरंत दक्षिणी यूटा में जाने के लिए कहा गया। वहां से उन्होंने अपने जन्म स्थान जर्मनी के मिशन सेवा करने को कहा गया। उसके बाद उन्होंने उत्तरी मेक्सिको में अंतिम दिनों के संतों की कॉलोनी के निमंत्रण में मदद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित द्वारा निमंत्रण दिया गया। मैं ये तथ्य इसलिए नहीं बता रहा कि उनकी या जो कुछ उन्होंने किया या उनके वंशजों के लिए महानता दावा करूं। मैं इन्हें उनके विश्वास और आशा के उदाहरण का सम्मान करने के लिए बता रहा हूं, जो कि उन्हें हृदय में का जब उन्होंने यीशु मसीह की सेवा की थी जिसने उन्हें नियुक्त किया था। उन्होंने उन बुलाटों को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि पुनः जीवित मसीह और हमारे स्वर्गीय पिता जोसेफ स्मिथ को न्यूयॉर्क राज्य में उपवन में दिखाई दिए गए थे। उन्होंने उन बुलाटों को स्वीकार किया उनकी उन्हें विश्वास था कि पौरोहित्य कुंजियों और परिवारों को मोहरबंद करने की शक्ति के साथ प्रभु के गिरजे को पुनर्स्थापित किया गया था। यदि परिवार के पास अपने अनुबंधों का पालन करने का पर्याप्त विश्वास है, हेनरिक आयरिन मेरे पूर्वज की तरह आप भी अपने परिवार को अनंत जीवन के मार्ग पर पावन अनुबंध बनाने वाले और परिश्रम और विश्वास के इनके पालन करने वाले प्रथम व्यक्ति हो सकते हैं। हम सबों के लिए जैसे ये हेनरिक के लिए था, ये जिम्मेदारियां कभी सरल होती हैं लेकिन अक्सर कठिन होती हैं। लेकिन याद रखें, जिम्मेदारियां कभी कभी कठिन हो सकती हैं क्योंकि उनका उद्देश्य हमें जीवन के मार्ग में स्वर्गीय पिता और उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के साथ हमेशा रहने के लिए आगे बढ़ते रहना है। आप अब्राहम की पुस्तक में से शब्दों को याद करें, और उनके मध्य एक व्यक्ति खड़ा था जो कि परमेश्वर के समान था, और उसने उनसे कहा जो कि उनके साथ थे, हम नीचे जाएंगे क्योंकि वहां स्थान है और हम ये वस्तुएं ले जाएंगे और हम पृथ्वी बनाएंगे जहां वे रह सकें, और हम उन्हें साबित करने का मौका देंगे कि क्या वे उन सब बातों को करेंगे जो प्रभु उनका परमेश्वर उन्हें करने की आज्ञा देता है, और जो अपनी प्रथम अवस्था का पालन करता है उन्हें दिया जाएगा, और जो प्रथम अपनी अवस्था का पालन नहीं करते उनसे उस राज्य में उनका समान महिमा नहीं मिलेगी जो अपनी प्रथम अवस्था का पालन करते हैं, और वे जो अपनी दूसरी अवस्था का पालन करते हैं उनके सिरों में पर महिमा हमेशा हमेशा के दी जाएगी। हमें दूसरी अवस्था का पालन करना परमेश्वर के साथ अनुबंधों को बनाने और हमें दी गई जिम्मेदारियों को विशेषनीयता से पूरा करने पर निर्भर करता है। पावन अनुबंधों और का जीवन भर पालन करने के लिए यीशु मसीह में विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि आदम और हवा का पतन हुआ था, हमें लालच, परीक्षाएं और मृत्यु सर्वव्यापी धरोहर के रूप में मिले हैं, फिर भी हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता ने हमें अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता उपहार में दिया था। ये महान उपहार और यीशु मसीह के प्रायश्चित की आशीष सर्वव्यापी धरोहर लाती है उन सभी के लिए पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा और अनंत जीवन की संभावनाएं हैं जिन्होंने जन्म लिया है। परमेश्वर की सभी आशीषों में अनंत जीवन महानतम है। हमें ये केवल तभी मिलती है जब हम यीशु मसीह के सच्चे गिरजे में उसके अधिकृत सेवकों के द्वारा दिए अनुबंधों को बनाते हैं। पतन के कारण हम सभी को बपतिस्मा का शुद्ध करने वाला प्रभाव और हाथों को रखने से पवित्र आत्मा का उपहार पाने की आवश्यकता है। ये विधियां उनके द्वारा संपन्न की जाने चाहिए जिन्हें इन्हें करने का उचित पौरोहित्य अधिकार है। फिर मसीह की आत्मा और पवित्र आत्मा की मदद से हम परमेश्वर के साथ बना ये सभी अनुबंध का पालन कर सकते हैं, विशेषकर वे जो मंदिर में दिए जाते हैं। केवल इसी तरह से हम इस मदद के साथ कोई भी परिवार में सदैव के लिए परमेश्वर के बच्चे के रूप में असली धरोहर का अपना दावा कर सकता है। कुछ जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें शायद ये एक लगभग असंभव सपना लग सकता है। आपने उन विश्वासी माता पिता के दुख को देखा होगा जो अपने बच्चों के कारण दुखी हैं, जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने अनुबंधों को अस्वीकार कर दिया है या इन्हें तोड़ने का चुनाव किया है। लेकिन ये माता पिता अन्य अनुभवों से उत्साह और आशा प्राप्त कर सकते हैं। आलमा और राजा मुजाया के बेटे परमेश्वर की आज्ञाओं और अनुबंधों के विरुद्ध घोर विद्रोह के बाद वापस आए थे। छोटे आलमा ने देखा था कि उसका बेटा कोरिएंटन घोर पाप से विश्वासी सेवा को लौटा था। मॉर्मन की पुस्तक ये चमत्कार भी बताती है कि लेमनैया ने धार्मिकता से नफरत करने की परंपरा का त्याग कर शांति कायम करने के लिए अनुबंध किया था। युवा आलमा और मुजाया के बेटों के पास एक स्वर्गदूत भेजा गया। यह स्वर्गदूत उनके पास पिताओं और परमेश्वर के लोगों के विश्वास और प्रार्थना के कारण आया था। इन प्रायश्चित की शक्ति का मानव हृदयों पर कार्य करने के उदाहरणों से आप उत्साह और दिलासा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु ने हमें सभी स्रोतों से आशा दी है जब हम उनकी मदद के लिए संघर्ष करते हैं। जो अपनी अनंत धरोहर को स्वीकार करते हैं उसने हमसे वादा किया है जब हम उसके पास लोगों और को लाने का प्रयास करते हैं, बेशक वह ऐसा करने से के उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। उनका अस्वीकार उसे दुख पहुंचाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता, ना ही हमें हार माननी चाहिए। अपने निरंतर प्रेम के साथ वह हमारे लिए एक परिपूर्ण उदाहरण कायम करता है और फिर से कितनी बार मैं तुम्हें एकत्रित करता, जैसे कि मुर्गी अपने चूजों को अपने परों के नीचे एकत्रित करती है। हाँ ओ तुम इज़राइल के घराने के पतित लोगों, हाँ ओ तुम इज़राइल के घराने के लोगों जो जरूशलम में रहते हो, जो तुम पतित हो, हाँ कितनी बार मैं तुम्हें एकत्रित करता हूँ, जैसे कि मुर्गी अपने चूजों को अपने पैरों अपने परों के नीचे एकत्रित करती है, मैं तुम्हें एकत्रित नहीं और तुम एकत्रित नहीं होते। आप स्वर्ग पिता के सब आत्मिक बच्चों को उनके घर में उसके पास लाने के लिए उद्धारकर्ता की असफल ना होने वाली इच्छा पर निर्भर हो सकते हैं। जो हम कर सकते हैं उसे करने का स्वर्ग पिता और उद्धारकर्ता इसका परिपूर्ण उदाहरण है। वे कभी भी धार्मिकता के लिए दबाव नहीं डालते, क्योंकि धार्मिकता को चुनना जाना चाहिए। वे धार्मिकता को हमें समझाने योग्य बनाते हैं और वे स्वयं देखने देते हैं कि इसके परिणाम बेहतरीन हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ है मसीह के प्रकाश को प्राप्त करता है, जो सही और गलत को देखने और को महसूस और महसूस करने में मदद करता है। परमेश्वर ने मानव सेवकों को भेजा जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें यह पहचानने में मदद करता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर सही बातों की आकर्षक को आकर्षक बनाता है ताकि हम अपने चुनाव के प्रभाव को महसूस कर सकें। यदि हम सही का चुनाव करते हैं तो हमें उचित समय पर खुशी मिलेगी। यदि हम बुराई का चुनाव करते हैं इसके साथ उचित समय पर दुख और पछतावा आता है। ये प्रभाव निश्चित है, फिर भी किसी उद्देश्य के कारण इन्हें पूरा करने में देरी की जाती है। यदि आशीष तुरंत मिलती तो सही का चुनाव करने से विश्वास का निर्माण नहीं होता, और चूंकि दुख भी कभी कभी बेहद देर से मिलता है इसके लिए तुरंत क्षमा पाने के लिए विश्वास की जरूरत होती है, इससे पहले कि हम इसके दुखी और पीड़ादायक प्रभाव को महसूस करें। पिता लेई ने अपने बेटों और अपने परिवारों के चुनावों के कारण दुख महसूस किया था। वह एक महान और भला मनुष्य परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। वह अक्सर उन्हें उद्धारकर्ता यीशु मसीह की गवाही देता था। वह आज्ञाकारिता और सेवा का एक उदाहरण था जब प्रभु ने उसे अपने परिवार को विनाश से बचाने के लिए अपनी सभी संसारिक संपत्ति को छोड़ने का निर्देश दिया था। उद्धारकर्ता के समान और अपने परिवार के हृदयों को पहचानने और भविष्य के दुख और सुख दोनों को देखने की शक्ति के बावजूद लेही ने अपने परिवार को उद्धार की ओर ले जाने के लिए अपनी बाहों को फैलाकर रखा था। आप और मैं लेही के उदाहरण से क्या सीख सकते हैं? आप ऐसा धर्मशास्त्र का प्रार्थना पूर्वक अध्ययन और अवलोकन द्वारा कर सकते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि आप छोटा और बड़ा दोनों दृष्टिकोण रखें जब आप अपने परिवार के लिए आशा की धरोहर देने का प्रयास करते हैं। थोड़े समय के लिए परेशानी होगी और शैतान तंग करेगा, और कुछ कार्यों के लिए विश्वास में धीरज से प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यह जानते हुए कि प्रभु अपने समय और अपनी तरीके से कार्य करता है। कुछ कार्य हैं जो आपको जल्दी करना चाहिए जब जिनसे आप प्रेम करते हैं वे युवा हो। याद रखें कि प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना, पारिवारिक धर्मशास्त्र अध्ययन और प्रभु भोज सभा में अपनी गवाही देना बहुत आसान और बहुत प्रभावी होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। छोटे बच्चे बहुत आत्मा के प्रति हमारे एहसास से अधिक संवेदनशील होते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं वे स्तुति गीतों को याद रखते हैं जो उन्होंने आपके साथ गाए थे। संगीत के अधिक वे धर्मशास्त्रों और गवाही के शब्दों को याद रखेंगे। अब पवित्र आत्मा ये बातें उन्हें याद दिलाएंगी, लेकिन धर्मशास्त्र और स्तुति गीत के शब्द अधिक समय तक कायम रहेंगे। ये यादें उन्हें वापस खींच लाएंगी जब वे लंबे समय के लिए संभवत वर्षों के लिए अनंत घर के मार्ग से भटक जाते हैं। हमें बड़े दृष्टिकोण की जरूरत होगी जब जिन्हें हम प्रेम करते हैं संसार के आकर्षण को महसूस करते हैं और संदेह के बादल उनके विश्वास पर छा जाते हैं। हमारा मार्गदर्शन करने और उनको शक्ति देने के लिए हमारे पास विश्वास, आशा और उदारता है। परमेश्वर के दो जीवित भविष्यवक्ताओं का सलाहकार के रूप में मैंने ऐसा देखा है। मैं विश्वास मैं विशेष व्यक्तित्व वाले लोग हैं। जब कोई गिरजे में किसी बात को लेकर चिंतित होता है, उनका अक्सर जवाब होता है, सब ठीक हो जाएगा। वे सामान्यता समस्या के बारे में अधिक जानते हैं बजाय चिंता करने वाले लोगों के। वे प्रभु के मार्ग को भी जानते हैं और इसलिए वे हमेशा उसके राज्य के प्रति आशावान रहते हैं। वे जानते हैं वे मुख्य है। हेनरिक आयरिंग के कुछ वंशज लगता है भटक गए हैं, लेकिन उसके बहुत से परनाती पोते परमेश्वर के मंदिर में सुबह 6 बजे उन पूर्वजों के लिए विधियों को करने जाते हैं जिन्हें वे कभी मिले नहीं हैं। वे आशा कि उस धरोहर के कारण जाते हैं जो उसने छोड़ी है। उसने एक ऐसी धरोहर छोड़ी है जो उसके वंशजों द्वारा प्राप्त की जा रही है। हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। नासरत का मसीह उसका प्रिय पुत्र और हमारा पुनर्जीवित उद्धार करता है। ये उसका गिरजा है, इसमें उसके पौरोहित्य की कुंजियां हैं और इसलिए परिवार अनंत हो सकते हैं। ये हमारी बेशक कीमती धरोहर है। मैं प्रमाणित करता हूं कि यह सच है यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
Our beloved Father who art in heaven,
हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं जब ये पहला सेशन खत्म होता है. हम धन्यवाद करते हैं सारे मैसेजेस के लिए जो हमने आज सुने और जो भी आपके आत्मा के द्वारा हमने महसूस किया. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास विश्वास हो कि हमने जो भी कुछ आज सुना उसे हम अप्लाई कर सकें और भविष्यवक्ता के साथ खड़े हो सकें, उनके साथ हाथ बटा सकें. और हम आपके द्वारा लीडर्स के लिए धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के प्रायश्चित के लिए धन्यवाद करते देते हैं. और जैसे हम यहाँ से जाते हैं, जो भी हमने महसूस किया हम उसे ठीक से अप्लाई कर सकें. यीशु मसीह के नाम में आमीन.
This has been a broadcast of the 184th.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर का 184th वार्षिक जनरल सम्मेलन का प्रसारण था. वार्ताकारों को जनरल अधिकारियों और गिरजा के जनरल कार्यालयों से चुना गया था. संगीत मॉर्मन गायन मंडली द्वारा दिया गया था.
This broadcast has been furnished as a public
Bonneville distribution द्वारा इस प्रसारण का प्रबंध जनसेवा के लिए किया गया था. कोई भी पुनरुत्पादन करना, रिकॉर्डिंग, प्रतिलिपि बनाना या इस कार्यक्रम का दूसरा प्रयोग करना बिना किसी लिखित सहमति के वर्जित है.